वो आधार ही हमारा हम ही हमारा गलत वो धीरे धीरे अभी समझाएंगे ना भी आप गलत
समझिए।
एक काम शब्दों को लीजिए, स्त्री पुरुषों में जो परस्पर का व्यवहार है वो काम, किंतु गोपियों का काम इसमें कोई गंध ही नहीं, वो क्या चीज है अब हम कैसे समझेंगे? हम तो जगत का उदाहरण लेकर कहीं से समझेंगे, तो वहां पर जगत का उदाहरण कोई काम ही नहीं करेगा।
गोपी तो हमारे समाज के जो हमारे पुरुष भाव बहुत स्ट्रांग है कि भोक्ता का या फिर को हम लोग वो बताया कि अगर हम गोपेश्वर महादेव की जब उनका वो उस रूप में श्रृंगार करते हैं तो फिर समय है वहाँ वृंदावन के मंदिर, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे पुरुष भाव को नष्ट करें। तो ये जो क्षमता है कि सिर्फ जैसे उसके लिए स्पेशलाइज डिपार्टमेंट सिर्फ गोपेश्वर महादेव का ही है, जैसे कोई भी वैष्णव आचार्य कर सकते हैं हमारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं?
कर सकते हैं, पूर्णिमा देवी करेंगे, जिन्होंने शंकर काशी या शुरू कर दिया वो पूर्णिमा देवी
पूर्णिमा
की योग माया वो कर सकते
हैं,
वो तो उन्होंने शंकर को लेकर के और ब्रह्मेश्वर में भी बात की निकले तो गोपी बन गए।
इस हिसाब से शिव जी को गोपी भाव प्राप्त है,
गोपी मैंने शरीर तो प्राप्त हुआ, भाव पीछे से गोपी भाव नहीं था इसलिए उनको वहाँ राक्षस स्थली से निकाल दिया गया, ये भी उन्हें निकाल दिया।
उसके बाद हुआ ये घटना घटित उनको ब्रह्म सरोवर में पूर्णवासी ने
पहले डुबाया, फिर गोपी शरीर हो गया, इनको लेकर के कहीं एक स्थान में बैठा दिया, रात हो रहा था, आज उल्लास नहीं हो रहा रात, लोगों ने कहा गोपियों ने कहा कृष्ण ने कहा जो कोई चीज आती है तब वो ढूंढने लगे, ढूंढते उसको देखा कैसे उसका खेत पकड़ लिया, तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे ससुर का नाम क्या है, तुम्हारा जन्म कहाँ है, कहाँ शादी हुई है, कुछ भी नहीं मतलब ये गोपी भाव, अभी तक गोपी भाव नहीं, सब गुलके मारने लगे, गाल फुला दिया, तब रोने लगे, तब फिर पूर्णिमा जी को पुकारा, पूर्णिमा जी आकर के फिर रक्षा की और फिर उनको पाया अच्छा रूप को देखो,
जन का प्रवेश नहीं देखने के लिए है, वो सिर्फ देखने
वो हमारे हमारे लोग भी नहीं जान पाते हैं
तो हमारे यहाँ ज्यादा उड़ाते हैं,
इसका भाव ये था जो एक तो जड़ शरीर हमारा है, गोपियों का था कोई जड़ शरीर था नहीं, मान लिया कि कृष्ण के प्रति हमारा लज्जा कृष्ण के पाने में बाधक है, लोक लज्जा, लोक लज्जा है, घृणा है, भय है और सब चीजें, जो प्रियतम है वो जो कुछ चाहता है, यहाँ तक कि प्राण चला जाता है तभी लज्जा को छोड़ना संभव नहीं, किंतु ऐसी चीज को भी गोपियों ने कृष्ण के कहने से उसको छोड़ दिया, ये पूर्ण शरणागति यहाँ पर है, ये भाव जब प्रेम हो गया तो पति और पत्नी जब मिलते हैं तो वहां पर कपड़ा और ये सब का कोई प्रश्न होता है, तो इतना भी यदि कृष्ण के प्रति नहीं हुआ, जो कि अप्राकृत शरीर वाले हैं, जिनका प्राकृत शरीर में प्राकृत कोई कामना नहीं है, वहां पर तो ऐसी सब भावना ही नहीं है, एक साधारण पिता जो है अपनी कन्या छोटी सी बालिका को स्नान कराता है, सब अंगों को धो देता है, उसके मन में कभी मैल नहीं आती, और कृष्ण इस पिता से भी कम है जगत से भी, इसलिए वहां पर केवल ये दिखलाया गया है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी जो है वो अवैध है, सब कुछ कृष्ण के लिए किया गया, ये प्रेम की प्रधानता दिखलाने के लिए वहां पर
अपराध
नहीं समझते हैं अज्ञान के कारण, तो आपको अपराध समझिए या जो कुछ करिए।
यहाँ पर व्यक्ति ने कोई चिंता तो वो सुना रहे थे हमारे दफ्तर में, कोई आए थे तो उन्होंने बुलाया कि ये हमारे यहाँ तालाब में नहाने जाते,
अब लाने के लिए भागवत में ही ऐसा लिखा है।
अच्छा ऐसा भागवत में?
हाँ, जैसे वरुण के निकट में जल के अधिष्ठात्री के देवता के निकट उन्होंने ये नंगी होकर के जो स्नान किया था ये उनके प्रति अपराध है, ये कृष्ण ने उनको कहा था कि तुम लोग ऐसे नंगी स्नान मत करना। वो नंगी ही स्नान किया करते थे, बहुत से जगहों में ऐसा होता है नंगे सब, कोई आदमी नहीं है उसको रख दिया कपड़े और स्नान किया। तो उस प्रथा को रोकने के लिए ये साधारण लोगों के लिए तर्क किया जाता है, किंतु इस तर्क में कोई दम नहीं है।
वो
भागवत में ऐसा ही लिखा है, जब वरुण देवता के निकट में उनका अपराध हो रहा था, वो नंगी रोज स्नान करती थी, उसको मना करने के लिए कृष्ण ने इस तरीके से उनको मना किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई तर्क के द्वारा उत्तर हो सकता है। और कृष्ण अघटन घटन तटीय शक्ति वाले हैं, बहुत सी उनकी लीलाएं हैं जो मुक्त महापुरुष लोग खुद भी नहीं जानते। किंतु हाँ यही बात
जयपुर में कनक लीला बनी,
हाँ ऐसा भागवत में लिख करके भी उसको मना किया गया, अनाधिकारी लोग इसका अध्ययन न करें। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्तियों लकड़ी और काट जैसे वो लोग सब इन दिव्य लीलाओं का चिंतन करें। रासलीला भी सबको न तो पढ़ना चाहिए,
इसके अधिकारी कौन हो सकते हैं महाराज? एकदम टॉप मोस्ट तो खैर हम लोग
टॉप मोस्ट न हो, अंततः शरीर से आसक्ति जिनकी दूर हो गई है, अब शरीर में ये शरीर का भाव ही नहीं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, ये अच्छा चीज है ये बुरा चीज है, अब ये सब चीजें उनसे असीब हो गई। जिस समय ये दिखला है इसलिए ना भागवत होने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी आगे आगे भग रहे हैं और नारद जी व्यास जी पीछे पीछे
ये प्रोग्राम अभी नहीं था, हम इसे पहले ही देख रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ था, कल तक साइंस में तो इसी तरह रखी हुई है ना।
व्यास देव जी का बता रहे थे,
हाँ तो वो सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, मैंने कोई भी उनके अंदर में उस भाव में भगवत चिंतन करते चले जा रहे हैं। नंग धड़ंग हैं, 16 वर्ष के हैं, शरीर भी दुष्ट है।
12 के लिए 16 वर्ष के
वही 12 कहीं लिखा है, कहीं 16 12 का ही ले लीजिए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, देखा एक सरोवर में कुछ स्नान करें अस्त पर आए वो भी नंगी। जब सुखदेव को देखा तब कोई भी बात नहीं, अपना स्नान करती रही, और जब व्यास जी आए तो जल्दी से कपड़े पहन करके और आ करके लज्जित होकर के प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा जैसे ये हमारे बच्चे को देख करके 12 वर्ष की उम्र तुम लोगों की उम्र का, और उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और हम वृद्ध हैं, हमारी केस पक गए हैं और ये सब अब दांत भी टूट गए हैं, वृद्ध हो गया, तुमको हमारी लड़की की लड़की के लड़की के लड़की के बराबर हो तो तुमको लज्जा क्यों आई? उन्होंने कहा जैसे उनको ये दृष्टि ही नहीं है, उन्होंने पूछा तो नहीं हमसे जैसे तुम लड़की है कि क्या है, आप तो पूछ रहे हैं ना, हमको लज्जा ये भी देखा उनको कुछ बताए। तो इस तरह से उनको ये जगत से कोई होश नहीं, वो लोग भागवत चर्चा
स्थिति में तो
वैसा निर्मल चित्त भागवत की कथाओं को सुनने का अधिकारी हम तो सब दर्शन करने वाले।
कई जगह लिखा है कि जो बहुत से काम है तो उसको ठीक करने का उपाय भी यही है, अगर वो किसी प्रामाणिक आचार्य के मुख से सुना जाए तो, इसलिए कभी कभी यदि हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए अगर उनको सुनते हैं इस भाव से कि हमारा
हाँ पहले उतना से आरंभ किया जाए, उतना से आरंभ करते करते और लीलाएं सब सुन लें। प्रहलाद महाराज जी का चरित्र हजार बार सुनिए, देवभूति और कपिल देव जी का संवाद सुनिए, विष्टासुर की कथा सुनिए, इसमें आत्मज्ञान लाभ होगा और ये शरीर के प्रति जितने काम और ये सब दूर हो जाएगा तब फिर इसमें खास होगा।
तो
और यदि महापुरुष को याद है वो जो कोई कथा सुना रहे हैं उसको सुनिए, उसी में से हमारा लाभ है। किंतु जब अपने आप देखिए तो अपने अधिकार के अनुसार ही, और ऐसा ही होता है, बिना अधिकार का कोई व्यक्ति उधर उधर में यदि पढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाए, नहीं तो अपने अधिकार के अनुसार ही चीजों को पढ़ना, उसको उसमें रुचि नहीं आती।
तो
हम आते हैं ना, हमारी रुचि उसमें इसलिए आते, गोपियों की चर्चा करते हैं, नहीं तो दूसरे कोई चर्चा करता है करेगा नहीं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है अभी।
महाराज अब हमारी इसमें रुचि बढ़ती जा रही है, अब हमें सुनने और पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ रही है, तो हमारे
धीरे 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 अग्रसर हम। हमको पहले वेदांत इत्यादि का अनुशीलन का करते हैं, तर्क वितर्क और ये सब चीजें में अधिक रुचि,
मतलब मठ में
आने पर सब वेद उपनिषद और जितने भी वो रामानुज का वेदांत है वो सब पढ़ करके बस वैसा ही चलता था, वैसा ही तर्क वितर्क और सभाओं में वैसा ही बोलता था, खंडन बंडन ये सब करता था। अब वो धीरे 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 आ गई श्रीमद् भागवत पर, आते आते धीरे 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 गोसाई ग्रंथों में प्रवेश कर, अब वो हमको याद करने पर भी नहीं आते, जब कोई प्रसंग आता है तब याद आता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सर्वम खिलमितम ब्रह्म सप्तम असि, अब ये सब आता नहीं वेदांत के लिए, जो साधारण लोगों में चलते ये नहीं ऐसा है ये सब होता नहीं। अब जो कोई भी प्रसंग लेंगे वो प्रेम का ब्रज का विशेष करके ब्रज का आ जाएगा, वो भी गोपियों के ऊपर में।
मगर आपने कहा कि अगर अपनी इच्छा प्रबल हो तो भगवान वैसे बंदोबस्त करते हैं, तो हमारे लिए भगवान ने वैसे बंदोबस्त कर दिया, आपको
देखो ये कैसे बंदोबस्त कर रहे हैं।
और इस कौन में भी इतना बड़ा ग्रुप है, हम दोनों तीनों के लिए मोस्टली
आया था ना, आपने दिया था आती होने वाला। अरे
5 बजे
आती होती है,
7:05
हो
चुका है,
7:05
आप 5 बजे से बैठे हुए।
अरे देखो इनको असल में कहना ये है,
दूसरा हम महामंत्र का जाप आपने एक बहुत अच्छा
व्यास जी ने वेदों का विभाग कर दिया और उपनिषदों को प्रकाश किया, 11,008 तरह के उपनिषद, वेदों के 4 विभाग, इसके 6 अंग हैं, 6 अंगों में तरह तरह की कलाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, संपूर्ण विद्या की परिसमाप्ति हुए वेदों में, ये सब उन्होंने प्रकाश किया। इसके बाद में महाभारत के उन्होंने, इसके बाद में पुराणों को भी प्रकाश किया। अब उनके मन में ये शंका हुई कि वेदों में उपनिषदों में पुराणों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें और तथ्य हैं कि वो परस्पर कंट्राडिक्ट हैं, कहीं लिखा भगवान निराकार है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान सत्य हैं किंतु अनंत हैं और ज्ञान स्वरूप है, उनका कोई शरीर नहीं, कहीं लिखा जो अजन्मा है, निराकारो अकार नहीं, और फिर कह देते हैं कि उनका आकार है, इसका सामंजस्य कैसे होगा? कहीं लिखा कि भगवान निर्गुण है, कोई गुण नहीं, और कहीं लिखते हैं कि उनमें समस्त अपराकृत गुण है। अपान निपादो जमना ग्रहिता पश्चत सचक्षु शुणोत्कर्ण, लिखा जिसे भगवान का कोई आकार नहीं किंतु वो सब अंगों से समस्त कर देते हैं। कलयंत पांति जगयंत उसमें है ना, ब्रह्म संहिता में जिसका वो पाठ होता है
अंगानीत के यश कलेन्द्र प्रियंत, अंगानीत के
अंगानी जस्य कलेश वृत्ति में, माने प्रत्येक अंगों में प्रत्येक अंगों की वृत्ति एक में है। आंख में चलने फिरने सूंघने देखने सोचने और चलने फिर सब कुछ शक्ति आए, पैर की अंगुलियों में सब कुछ है, कान से ही वो चल सकता है सुन सकता है माने कर सकता है उससे विचार कर सकता है, वो उसमें भगवान के प्रत्येक अंगों में प्रत्येक अंगों की शक्ति है। माने तो वो उसके कान तो है नहीं किंतु विश्व भर की बातों को सुनता है, आंख नहीं है किंतु सब कुछ को देखता है, पैर नहीं है किंतु वो चलता है, ये सब कंट्राडिक्टरी परस्पर है। अब उन्होंने देखा जैसे इस वेद में तो कंट्राडिक्टरी हो नहीं सकता, तो इसका कैसे सामंजस्य, लोग इसका अलग अलग अर्थ, इसलिए वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत कहते हैं वेदों के सार भाग को, अर्थात एक एक उपनिषद एक एक वेदांत है, छंदोग्य उपनिषद इसका सार एक वेदांत, वेद का अंत अर्थात वेद का सार, तैतरीय उपनिषद कठोपनिषद इत्यादि सब उपनिषद, ये सब वेदांत ये कहलाते हैं, वेद का सार भाग। उन्होंने उसका सूत्र लिखा, सूत्र माने क्या, जैसे कोई एक पूरा वेदांत है, अब उसमें से कोई एक सूत्र बनाया, सूत्र उसको कहते हैं, जैसे कि एक कीर्तन है यशोमती नंदन ब्रज पर नाच, पूरा कीर्तन 10-12 लाइन का है, हमने य लगा दिया याद करने के लिए कि ये यहाँ य आएगा तो हम समझ लेंगे कि ये यशोमती ने अपनी डायरी में लिख लिया, और ऐसे जितने भी कीर्तन नरोत्तम ठाकुर के और हैं हजारों तो केवल अक्षरों में ही देख लिया, और उससे हम जब जब हम स्मरण करेंगे तो उसको देख लेंगे, जैसे ये उसको डिनोट करता है, किसको कहते हैं सूत्र। उन्होंने सूत्र बनाया वेदांत, अब ये हुआ वो वेद के जो सार भाग उपनिषद हैं वो तो वेदांत हुए, और ये उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। उसमें कहीं लिखा ये ब्रह्म जो है वो अनादि है अनंत है ज्ञान स्वरूप है, कभी लिखा जे निराकार है, कभी लिखा जे साकार है, कभी कुछ लिखा। उन्होंने एक सूत्र बनाया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म किसको कहते हैं, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, जब संसार में कोई जीव भ्रमण करते 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 यहाँ के दुखों को देख करके संसार से हताश हो जाता है, और वो देखता है कि संसार के सुख सुख नहीं है, उदाहरण देखता है अपने ऊपर में घटाता है, दूसरों पर घटाता है, तीसरे पर घटाता है, देख करके अंत में निर्णय करता है कि संसार के जितने भी कर्म हैं और कर्म फल हैं, संसार के विद्या बुद्धि पांडित्य ऐश्वर्य रूप और सब जो कुछ है ये सब कोई भी सुख देने वाले हैं, ये दुख के देने वाले हैं। जब इस बात पर एकदम निर्णय और पक्का वो हो जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है ये संसार दुखमय है, कुछ समय के लिए ये सुखमय प्रतीत होता है किंतु यह प्रतीति गलत है, ये दुखमय है, तब वो क्या करता है, सद्गुरु के यहाँ जाता है। श्लोक है सद्भी जिज्ञास सत ब्रह्म, अर्थात वो जब संसार को इस प्रकार से रियलाइज कर देता है अनुभव कर देता है तो श्रेय उत्तम कल्याण को जानने के लिए अच्छा यथार्थ में ये सब कहाँ से आया, किसने बनाया, ये दुखमय कौन कैसे है और सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके लिए वो पूछेगा कि ब्रह्म किसको कहते हैं। तब ब्रह्म किसको कहते हैं, इसके उत्तर में बदलाया जन्मादस्य जतः, बस इतना है जन्मादस्य। अब ये जन्मादस्य जो सूत्र है ये वेदांतों में ये सब जगह तरह तरह के प्रसंग आए हुए हैं, कठोपनिषद में आया, छांदोग्य में आया और जगहों में आया और श्रीमद् भागवत में भी आया, गीता में भी आया। तो उन्होंने इसको इस रूप में लिया ये जन्मादस्य जतः। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा करके और कठोपनिषद में आया जतो वा इमानी भूतानि ज्ञायन्ते, जितनी भी ये भूत प्राणी हैं और विश्व ब्रह्मांड है जिससे उनका जन्म होता है, जिससे उनकी स्थिति बनती है और अंत में जिसमें समा जाते हैं उसको सुंदर। ये जगत है ना, ये भी निकला, कहाँ से निकला, जिससे निकला और जिसके द्वारा भी प्रतिपालित हो रहा है। जन्म हमारा किसने दिया, ऐसे साधारण रूप में मालूम होता है कि माता पिता ने जन्म दिया, किंतु उसके माता पिता को किसने जन्म दिया, आप बूढ़े होने पर वो संतान पैदा क्यों नहीं करता। तो इस तरह से देखने से प्रतीत होता है कि यथार्थ में माता पिता एक निमित्त है, जन्म देने वाला विश्व ब्रह्मांड का ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे और विश्व ब्रह्मांड है, इसके जन्म देने वाले वो और उनका पालन पोषण कौन करता है। हम लोग जो जीवित हैं आज, हवा बंद हो जाए तो, सूर्य बंद हो जाए तो, पृथ्वी रसातल में जब चली जाए तो, थोड़ा सा भूकंप का झटका हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कीजिए ऐसी सूर्य की किरणें आई, ये सब विश्व ब्रह्मांड को जला दिया, उसमें क्या होगा। मान लो चारों तरफ ने एकदम आग लगी, बम एटम बम और नाइट्रोजन बम फेंक दिया, उस समय हमारी क्या स्थिति होगी। किंतु हमारी रक्षा कौन कर रहा है, वही अज्ञात रूप से ब्रह्म कर रहा है, उसी की वजह से हमारी स्थिति है। एक मिनट में हवा भी यदि बंद हो गया बस खत्म, हवा को चलाने वाले कोई इंजीनियर और ये सब तो कोई राज्य सरकार या सेंट्रल या कोई तो है नहीं, तो इसलिए वो बचाने और अंत में सब जहाँ पर समा जाते हैं प्रलय काल में वो है। अब ये तय हुआ भागवत उसको लिखे वही सूत्र को, ये जो सब वेद निकले हैं ओंकार से निकले हैं, ओंकार से पहले निकला गायत्री ओम ओम अ से कृष्ण, ओ से शक्ति राधिका और जितने विश्व ने जितने जी अ से कृष्ण और ओ से शक्ति राधिका और म से जितने जीव जितने ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा था, ये तीन मिलकर के उठ। अब इसको थोड़ा सा और विस्तृत किया तो कैसी है, ओम भूर भूर स्व सब सब सुरेंद्र भर्गो ये गायत्री तीन सेक्शन करके ये गायत्री है, ये तीन चरण हैं। अब इसी ये किसको कहते हैं, भर्ग देवस्य देव की शक्ति, शक्ति कौन, उस शक्ति के बहुत प्रकार जिसमें वो है पराशक्ति, एक अपराशक्ति, एक तटस्था शक्ति, ये तीन शक्ति इसके भी लाखों प्रकार शक्ति है। और उसे ये सब कुछ मूल में वही एक ब्रह्म है। अब उस शक्ति कौन है, भर्गः देवस्य, वो सूर्य की उपाख्या है। कौन? सूर्य जो में ये शक्ति जो ये प्रकाश जगत को करने को होती है, ये कहाँ से आई? वो पराशक्ति से आई। वो पराशक्ति कौन है? कृष्ण की वो शक्ति है। हम उसका ध्यान करते हैं, धीमही। अब वही धीयो अर्थात बुद्धि में वो शक्ति हमको ऐसे करे जरा अपने शक्तिमान को लेकर के और हमारे हृदय में प्रच उदया प्रतिष्ठित हो, मैंने अच्छी तरह से भली भांति हमारे हृदय में उदित। बिना उसके उदित हुए हम उसको नहीं देख सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो ब्रह्म। गीता भागवत में, भागवत उसका अर्थ है पूरा, जैसे जो हुई ना भागवत उसी को प्रकाश करता है। कैसे? जन्मादस्य यतः अन्य आदि तरतस्य अभिज्ञोतरात् तेने ब्रह्म विराज आदकवये मुह्यन्त सूर्य तेरो तेजो बार मृदंग यत्र विनमयो त्रिसर्गो अमृता यत्र अमृता धामना सैन निरक्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कोई गीत गायत्री का ले आने धीमहि और ओं जन्मादस्य ये सब करते थे पूजा करती है, अर्थ होगा संक्षेप में अर्थ हुआ। अब इस जो ये श्लोक है चार चरण का, इसकी व्याख्या समस्त भागवत 12 स्कंदों में भागवत है और वहां पर उसकी व्याख्या। अब जैसे सूत्र है ना जन्मादस्य जतः अन्वयादि, इस श्लोक में कहते हैं जिससे विश्व ब्रह्मांड का जन्म, जन्म आदि आदि मैंने, आदि मैंने हुआ उसकी जो स्थिति है और उसका ध्वंस है, ये होता है जिससे। किंतु इसका असल अर्थ है गीता का दसम स्कंध जो है जन्म आदि, आदि रस का जिससे जन्म होता है। आदि रस कौन सा है? क्यों आदि रस है? उसी से ही बात चल रही है, उसी से ही सत्य हुआ, उसी से ही दास्य हुआ, उसी से ही, उसी से हास्य अद्भुत कर्म रौद्र ध्यान कृपा सब का मूल कारण, इसलिए वो आदि, इसलिए आदि किससे प्रकट होता है? किससे? पहले कहो जो कृष्ण से होता है, किंतु कृष्ण अकेले कैसे करेंगे? इसलिए राधा जी को लेकर के राधा और कृष्ण से जो आदर होता है, विलास कैसे होगा? कृष्ण अकेले कैसे विलास करेंगे? और वो विलास करेंगे तो जो अधिक गोपियां नहीं रहेंगे तो भी विलास नहीं होगा, अब उसके लिए माता जी नहीं रहेंगी तो भी नहीं होगा, सखा नहीं रहने से तो नहीं होगा, गायें नहीं रहने से नहीं होगा, और उसके लिए भूमि चाहिए ब्रज नहीं होने से तो नहीं होगा। ये सब मिला करके राष्ट्र का उपकरण ये सब से दसम स्कंध में किसी का भी में। अब इससे बहुत से दृष्टि का नहीं कहना नहीं चाहिए, इसलिए कहा कहते कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको अमृत मिल रहा हो वहाँ पर किरासन का तेल कोई पीने के लिए दे दे तो पियेंगे कि नहीं? क्यों क्यों नहीं पिए? आम का रस मिल रहा है, अमृत मिल रहा है तो आप किरासन का तेल, आपको खूब प्यास लगी है तो क्या पियेंगे? खारी कुएं का पानी है वो एक जगह, और पासी में जमुना और गंगा सुंदर रूप में बनी, निर्मल पानी है, सुंदर स्वच्छ है, तो आप वो खारी कुएं का पानी पियेंगे ना गंगा जमुना का? इतना सुंदर पानी, उसी में स्नान करेंगे शरीर तर हो जाएगा, पानी पियेंगे हृदय भी तर हो जाएगा। तो वैसे ये कृष्ण के जो मंत्र हैं गोपाल मंत्र और ये सब गंगा जमुना के निर्मल पानी और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, ये नारायण का ऐश्वर्यमय धाम उससे प्राप्त होगा। और इसलिए ब्रजधाम में आप कृष्ण की सेवा मधुर भाव से, इसलिए संत लोग कहते हैं भैया उधर में मत जा, उस घाट में मत स्नान करो, इधर में। तो अभी यदि किसी की इच्छा है तो भी इस स्थिति से तो लाख गुना अच्छी है।
हमारे
भागवत
कौन में
कहते हैं किन्तु अब तत्व तो सब गहराई में तत्व तो जाने नहीं
महाराज जी जो अपनी आपने जन्म दी अस्थियत की जो बात वही है मैंने पहली बार पढ़ी है पहली बार
सुनी बता सके तो
इसी से संबंधित थोड़ी सी व्याख्या हो सकती
अब आगे अगली बार आएंगे ना तब से थोड़ा सा विश्राम तो करने दो अभी 3 बजे से बैठे हैं अभी 7 बज गया 4 घंटा हो गया
महाराज जी जो शास्त्रों में बोलते हैं